श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 20 श्लोक संख्या 36 डेट 27 मार्च 2015 स्पीकर कमलोचन प्रभु
तम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत रमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। पिछले श्लोक में हमने मुनियों के विषय में चर्चा किया, किस प्रकार शरद ऋतु आते हैं बादल अपना सारा जल देने के बाद कुछ हल्के बादल वो आकाश में रह जाते हैं जो सफ़ेद रंग के होते हैं, और जब वो सूर्य को ढकते हैं बादल, वो सूर्य के प्रकाश से वो बादल एकदम ऐसे प्रकाशित होते हैं जिस प्रकार एक मुनि का हृदय हो, जो सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग करके और सारे जितने भी पाप प्रवृत्तियों को त्याग करके शुद्ध प्रकाशमान मुनि का हृदय के बराबर वो बादल है। तभी प्रकृति का और वर्णन करते हुए सूक्ष्म विचार या सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रकृति की ओर शरद ऋतु का वर्णन हो रहा है। बारिश के मौसम के बाद पहाड़ों से पानी बहता है, जलधारा होती है। बारिश के मौसम में आप जाएंगे हर जगह, जहाँ जहाँ पानी आप दिखता भी नहीं उधर ही पानी बहना शुरू होता है। लेकिन शरद ऋतु के मौसम में बारिश तो समाप्त हो गया, तो ये जो नदियों में पानी आना यानी पहाड़ों से जो पानी गिरना जो है, वो कभी गिरता है कभी नहीं गिरता है, कभी वो जल की धारा रहती है कभी नहीं रहती है। बड़ा विचित्र बात है कि अचानक से जल की धारा बहने शुरू हो जाएगी और कभी नहीं बहता है। उसके पीछे एक कारण है, पहाड़ों में पत्थर जो होता है तो उन पत्थरों में बारिश का जो पानी है, वो पहले का जो बारिश का पानी है वो जमा हुआ रहता है। क्योंकि जमा हुआ है वो पानी, सारा मिट्टी जो है वो नीचे चले जाता है और शुद्ध पानी ही ऊपर रहता है। बारिश के मौसम में जो पानी का धारा रहती है पहाड़ों में, वो मिट्टी से भरा हुआ पानी रहता है, यानी मिट्टी से वो लाल लाल रहता है, तो उसका आप उसको पी नहीं सकते सीधा। लेकिन शरद ऋतु का जो जल जो है जो पहाड़ों से आता है वो पत्थरों के द्वारा फिल्टर होके आता है, इसलिए उस पत्थरों में जो जल एकदम बिल्कुल भरने के बाद वो अचानक से कोई पत्थर निकल जाता है या कोई पत्थर में थोड़ा सा क्रैक आ जाता है, उधर से एकदम शुद्ध जल की धारा बहती है। कभी कभी आप जाए कि जे कभी पहाड़ों में कहीं बद्री इत्यादि जाइए, बारिश के मौसम में पानी पीने के लिए मना कर दे बारिश आता है तो, जब बारिश नहीं आता है तो झरना देखिए, झरने से पत्थरों के बीच में से पानी कहाँ से निकलता रहता है, और कभी निकलता कभी नहीं निकलता है, अचानक से निकलना शुरू हो जाएगा बाद में बंद हो जाएगा। तो ये प्रकृति का एक सूक्ष्म नज़रिया है। इसलिए शास्त्रों में जैसे श्री राधा गिरिधारी भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की प्रकृति के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। भगवान को जानना हो, भगवत तत्व को जानना हो, प्रकृति को बहुत नज़दीकी से देखना, उसके अंदर प्रत्येक विशेषता को देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, तुआ जगत अति विचित्र, जगत जो है विचित्र है, अनेक अनेकों सुंदर सुंदर चीज़ों से निर्माण हुआ है प्रकृति। ये विविधताएँ हैं, ये सुंदरता प्रकृति में कहाँ से आया है? क्योंकि कृष्ण ने उसको स्थापना किया, कृष्ण ने निर्माण किया है। भले ही हम कहते हैं भौतिक जगत दुखाल है, शाश्वत है, लेकिन और एक दृष्टिकोण है, भगवान की सृष्टि है कि नहीं? तो किसी ने प्रश्न पूछा, रोजी यहाँ प्रकृति का इतना वर्णन करते हो, लेकिन शास्त्रों ने सुना है कि भौतिक जगत दुखाल और शाश्वत है। समस्या भौतिक जगत नहीं है, हमारा इस भौतिक जगत की आसक्ति वो समस्या है। क्योंकि भगवान ने इस जगत को बनाया है तो दोष जगत में नहीं है, दोष किस पे है? मेरे में है, क्योंकि मैं इस जगत की वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाता हूँ। पूर्णमादा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्ण उदच्छते, भगवान पूर्ण है, तो भगवान से कुछ भी उत्पन्न होता है वो भी पूर्ण होता है। आप कभी ये मत सोचो कि इस जगत में दोष है। दोष जो है हमारी इस जगत के प्रति आसक्ति की वजह से है, समस्या जो है आसक्ति है। इसलिए भगवद गीता के 15वें अध्याय भगवान कहते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़े चित्वा तत्परम तत्परिमार्गितव्यम। तो उन्होंने कहा असंग शस्त्रेण, तो हमारा संगति इस जगत के साथ, यानी हमारी आसक्ति इस जगत के साथ ये समस्या। इसलिए क्या करो, असंग के शस्त्र के द्वारा अपनी आसक्ति को काटो। तो समस्या इस जगत का नहीं है। लोग कहते हैं इस जगत माया है, नहीं, जगत माया नहीं है, माया हमारा इस जगत के प्रति दृष्टिकोण जो है, मेरा वस्तु है, ये चीज़ मेरा है, ये वस्तु समस्या नहीं है, ये वस्तु मेरा है करके समझना जो है ये समस्या की बात है। अब देखिए भागवत में सृष्टि के विषय में अनेकों अनेकों जगह वर्णन किया गया है। अगर हमको भगवान को ही प्राप्त करना है तो भागवत में सृष्टि के विषय में, प्रकृति के विषय में, सुंदरता के विषय में ऐसा वर्णन क्यों किया गया है? व्हाई इट इज देयर? क्यों? क्योंकि भगवान को जानना है तो प्रकृति के द्वारा ही जाना जा सकता है। क्योंकि कृष्ण आपके सामने खड़े नहीं हैं, विग्रह के रूप में ज़रूर हैं, लेकिन सच्चिदानंदमय स्वरूप को आपको समझना है, कृष्ण का कृष्ण तत्व को जानना है। पहले जीव तत्व को जानना होगा और ये जगत तत्व को जानना होगा, जड़ वस्तु को जानना होगा। जड़ वस्तु को जाने बिना कृष्ण को जान नहीं सकते, जीव को जाने बिना और भगवान को नहीं जान सकते। इसलिए श्री जीव गोस्वामी पाद अपने तत्व संदर्भ में बहुत लंबी तरीके से व्याख्या करते हैं, जीव तत्व का व्याख्या करते हैं। बाद में भागवत के 10 विषय वस्तुओं के विषय में व्याख्या करते हैं। 10 विषय वस्तु में जो पहला 9 विषय वस्तु है वो सभी प्रकृति के संबंध में है। सर्ग सृष्टि, विसर्ग गौण सृष्टि, स्थानम अलग अलग प्रकार के लोगों का वर्णन, पोषणम भूति किस प्रकार के अलग अलग वर्ण और आश्रम में लोग कार्य करते हैं तीनों गुणों के प्रभाव में, भूति मनवंतरा मनुलोक किस प्रकार इस जगत को पालन कर रहे हैं, ईशानुकथा भगवान अलग अलग समय में कैसे आके लीलाएँ करते हैं, ईशानुकथा थोड़ा बहुत ईशानुकथा हम लोग कृष्ण के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक तरीके से देखा जाए भागवत के 10 विषय वस्तु में 9 विषय वस्तु प्रकृति के संबंध में है। तो कृष्ण को समझना है तो ये दो तरीका है, एक है जीव जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है और एक प्रकृति जो बृहत से बृहत है, उसके द्वारा ही भगवत तत्व को निरूपण किया जा सकता है। उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान कौन है, उनके विषय में कहते हुए कहा गया है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े, अनोरणीयाम महतो महियाम। भगवान को जानना है, वर्णन कैसे करें? तो उपनिषद कहता है अनोरणीयाम, भगवान कौन है? अणु का ही अणु है, तो अणु का अणु है, तो अणु को जानो तभी तो अणु का अणु जान सकते हो। अणु कितना सूक्ष्म है, मतलब अनोरणीयाम करते आत्मा को जानना। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, तो भगवान सच्चिदानंद है तो कैसे पता लगेगा? पहले आत्मा को जानो, आत्मा सच्चिदानंद है तो, अरे आत्मा सच्चिदानंद है तो भगवान भी इस प्रकार का महान सच्चिदानंद स्वरूप होगा, तो उस प्रकार का दूसरी ओर देखेंगे कितना महान है भगवान, कोई प्रश्न पूछे तब आता है। उपनिषदों में यही गाथा आती है कि कितने महान जानना चाहते हो, मत भयात वातिवातो यम, ये जो हवा है ना, जो बह रही है ना, तूफान आता है ना, भगवान के भय से बहता है। तो हवा का उदाहरण लेके भी पुनर्विश्व में भगवान का वर्णन किया गया, भगवान की शक्ति का वर्णन किया गया है, क्योंकि हमारे लिए हवा जो है वो हम देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। और सूर्य वो घूमते हैं, अपना प्रकाश को देते हैं, क्यों? ये भगवान की डर से देते हैं। तो भगवान के साथ हमारा सीधा संबंध नहीं है, देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, लेकिन सूर्य को देख सकते हैं, हवा को अनुभव कर सकते हैं और अग्नि को देख सकते हैं। तो इन प्रकृति के चीज़ों के द्वारा भगवत तत्व को निरूपण करना ये अध्याय का विशेषता नहीं है, बल्कि उपनिषदों में भी इस तरीका को इस्तेमाल किया गया है। मान लो कि एक बच्चे को कोई चीज़ समझाना है, को वो बच्चा जो है उस चीज़ को कुछ भी नहीं जानता, वो उसका कोई उनको उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं मालूम है, तो उस चीज़ को कैसे समझाओगे आप उस बच्चे को? उस चीज़ को कैसे समझाओगे? वो बच्चा जो चीज़ जानता है ना, उसका उदाहरण देते हुए समझाओगे। देखिए, अचानक से कोई चीज़ का वर्णन करने शुरू कर दोगे तो वो बच्चा नहीं समझ पाएगा, कोई भी समझ नहीं पाएगा। हाँ, जैसे किसी को कहें कोई दक्षिण भारत का है, तो उसको 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 एक उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा मजाक वाला उदाहरण है, उसको समझाना चाहता है कोई ढोकला क्या होता है, वो दक्षिण भारत से कहीं ऊपर गई बाहर नहीं गया है, उसको क्या कहना पड़ेगा? ढोकला कैसे होता है मालूम है? आपने इडली खाया है? तो हाँ, तो थोड़ा पीला रंग का होता है। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा बहुत उसको याद आएगा, हो पीला मालूम है उसको, इडली मालूम है। तो बाद में इडली तो गोल रहता है, वो उसको समझ लेना कि तुम ऐसा एक वो स्क्वायर जैसा रहेगा, एक इतना तो पीस जैसा रहेगा, ये गोल और चपटा नहीं रहेगा। अच्छा, तो थोड़ा पीला समझेगा और उसको वो ऐसा स्क्वायर जैसा रहेगा, तब तो समझ में आएगा। अच्छा, तो उसके ऊपर थोड़ा सोच लेना कि एक मिर्ची डाला हुआ है। तो आप सीधा उसको ढोकला है बोलो तो समझ में नहीं आएगा उसको। उसको पहले से कोई चीज़ जो मालूम है उसके साथ में ही उस चीज़ का वर्णन किया जा सकता है। उसी प्रकार जो हमारे अनुभव के अंतर्गत है, उन वस्तुओं के द्वारा जो हमारे अनुभव के परे हैं, उन वस्तुओं को वर्णन करना ये वेदों की शैली है। तो भागवत के 10वें स्कंद में इस बात को वर्णन किया जा रहा है। कभी कभी ये प्रश्न होता है, हम गए गुरु के पास, कुछ बोले नहीं, हमको सिखाए नहीं, हम कहीं कोई किसी को तो शिक्षा दे दिया, किसी को दीक्षा देते, किसी को नहीं दे दिया, तो लोग सोचते हैं कि पार्शियलिटी हो रहा है, हमको दीक्षा नहीं मिला, हमको ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिला, इनको मिल गया, हमारे साथ पार्शियलिटी किया जा रहा है। और उनको तो बेटा के अच्छी तरह सिखाते, इतना समय देते हैं, हमसे बात भी नहीं करते, तो लोग इस बात के ऊपर विचलित है। लेकिन इस श्लोक में कहा गया है, क्या कहा गया है? जिस प्रकार शरद ऋतु के मौसम में पहाड़ों से जल बहता है, कभी बहता है कभी नहीं बहता, इसलिए कहा गया है गिरयो मुमुच्छु तो यम, मुमुच्छु मतलब देना, तो यम मतलब जल देता है, तो गिरयो मुमुच्छु तो यम कभी जल देता है, क्वचिन न मुमुच्छु स्वयं शिवम, शिवम मतलब शुद्ध। जैसे आपको मालूम होना चाहिए इधर शिवम शब्द इस्तेमाल किया गया है, बारिश के मौसम का जो जल होता है वो थोड़ा सा मिट्टी से भरा हुआ रहता है, आप डायरेक्टली पी नहीं सकते हो, अशुद्ध रहता है, लेकिन ये जो शरद ऋतु का जल होता है वो शिवम, वो शुद्ध रहता है, वो एकदम प्योर रहता है, पी सकते, क्योंकि वो पत्थरों से निकला हुआ है। तो क्वचिन न मुमुच्छु शिवम, क्वचिन न मुमुच्छु कभी नहीं देता है, वो कब देता है और कब नहीं देता है, क्यों देता है क्यों नहीं देता है, वो किसी को नहीं मालूम, उसको रिसर्च जितना भी रिसर्च करने जाओ पता नहीं लगता। उधर एक निकला था, एक कुछ लोग निकले पता करने के लिए गंगा हमें इतना पानी कहाँ से आ रहा है, इतना जल कहाँ से आ रहा है, तो गंगोत्री तक पहुँचे, तो गंगोत्री के आगे पहुँचते पहुँचते गोमुख तक पहुँचे, बोट लेके पहुँचे, तो उन्होंने सोचा है कि गोमो कितना बड़ा सा ऐसा एक धारा है, तो उधर से इतना जल का प्रवाह होता है, इतना जल का प्रवाह होता है, लोग हैरान हो गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग गए रिसर्च करने के लिए ये जल कहाँ से आ रहा है, बहुत प्रयास किया, 15 साल रिसर्च किया, कम से कम 25-30 लोग मर भी गए उस रिसर्च करते करते, इधर उधर बोट में चलते चलते, लेकिन पता नहीं लगा ये जल कहाँ से आ रहा है, ही डोंट नो इतना शुद्ध जल का प्रवाह कहाँ से हो रहा है। वो उधर से निकलता है और अभी देखो कलकत्ता बंगाल तक पहुँचता है तो इतना जल की धारा बह रही है, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, किसी कुछ नहीं मालूम। तो ये ऐसे ऐसी बहुत सारे प्राकृतिक चीज़ें इस जगत में हैं, तो हमको कब ये होता है और कब नहीं होता है, क्यों होता है क्यों नहीं होता है, ये कभी पता नहीं सकते। शास्त्रों में कहा गया, गुण संहिता में कहा गया है, जल का या नदी का मूल पहचानने मत जाओ, नदी का मूल कहाँ है वो ढूंढने मत जाओ, क्योंकि ये जो नदियाँ बहती हैं वो इस जगत में खाली दिखाई पड़ रही है, अस्तित्व में उसका संबंध दैवी संबंध है। खास करके भारत की जो नदियाँ हैं वो साधारण नहीं है, जैसे स्वर धुनी कहा गया है क्या गंगा जी को, क्योंकि स्वर्ग में बहती हैं, स्वर्ग से थोड़े से अंश इस जगत में दिखाई पड़ रहा है, वो पाताल में बहती है, वो किस प्रकार बहती है, कब ज़्यादा पानी आता है कब कम पानी आता है और क्यों है क्या है, उसका कोई रिसर्च नहीं है, नथिंग लाइक दैट। तो इधर क्वचिन ना मुमुच्छु शिवम, कभी नहीं देता है कभी देता है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, हे देवताओं के हाथ में है, दैवी आदिदेव अधिदेव हैं, अधिदेव के नियंत्रण में ही ये प्रकृति चलता है, हमारे नियंत्रण में प्रकृति नहीं होता है। हम इस प्रकृति को नियंत्रण करने जाएंगे प्रकृति जो है उल्टा वो ढसता है। जैसे मान लीजिए कोई एक सिंह है, शेर है, तो शेर को नियंत्रण करने जाओगे तो क्या होगा, वो शेर खुद आपको खा जाएगा। उसी प्रकार ये प्रकृति जो है मया मयाध्यक्षण प्रकृति ही भगवान के नियंत्रण में है, इसलिए हम नियंत्रक बन के इस प्रकृति के ऊपर नियंत्रण जमाने जाएंगे वो प्रकृति जो है एक जहरीला सांप जैसा ढसता है। इसलिए इस बहुत सारे प्रकृति दुर्घटना क्यों हो रही है, क्योंकि हम प्रकृति को नियंत्रण करने जा रहे हैं। अभी जाके देखिए उसका तुलना किया गया है किससे, यथा ज्ञानामृतम काले, यथा ज्ञानामृतम, जिस प्रकार ज्ञान का अमृत है वो ज्ञानिनो ददे, जो ज्ञानी देता है और न वा कभी नहीं देता है। जैसे पहाड़ों से शरद ऋतु में पानी कब मिलता है कभी नहीं आता है, उसी प्रकार ज्ञानी जो है कभी ज्ञान देता है कभी नहीं देता है। और ज्ञान के विषय में कहा गया है अमृतम, ज्ञान का अमृत है, और तोयम यानी जल का वर्णन किया गया शिवम, शिवम तोयम ज्ञानम अमृतम, जल का तुलना इधर ज्ञान से किया गया है। जैसे ज्ञान का जल का जो विश्लेषण किया गया है शिवम शब्द के द्वारा, ज्ञान का विश्लेषण किया गया अमृत शब्द के द्वारा, ज्ञानामृतम शिवम तोयम ज्ञानामृतम। तो जैसे शुद्ध जल बहता है शरद ऋतु में, उसी प्रकार ज्ञानी नहा जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उनसे उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वो कैसा रहता है, वो अमृत रहता है, अमृतत्व को प्रदान करने वाला ज्ञान है। बारिश के मौसम का जो जल होता है वो भी किस प्रकार का जल है, अशुद्ध ज्ञान है, जो आजकल की वैज्ञानिकों से निकलता है वो अशुद्ध है, उसके अंदर दोषपूर्वक है, वो जैसे वो खराब जल आप पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे। आजकल ये भौतिक ज्ञान लोग पढ़ते हैं इसके वजह सब लोग बीमार पड़े, वो अमृत हैं, उसको मृत्यु की ओर लेके जाने वाले ज्ञान है। इसलिए शास्त्रों में इसको बच्चों को भी सिखाया जाता है, इसकी क्या सिखाया जाता है, मृत्योर्मा अमृतंगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया, तमस से उत्पन्न निकल के हमको ज्योति को जान जान, तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया, मृत्यु से हमको अमृत की ओर जाना है। असतोमा सद्गमया, हम तो असत ज्ञान का प्रचार इस जगत में बहुत हो रहा है, बड़े बड़े कंपटीशन लगता है, मुझे अभी ये स्कूल में भर्ती होना है, मुझे ये कॉलेज में भर्ती होना है, लेकिन ये जो असत ज्ञान होता है ना, असत ज्ञान वो असुरों के द्वारा उत्पन्न होने की वजह से वो योग्यता के बिना किसी को भी दे देते हैं, ये समस्या है। आजकल की अगर समस्या को एक लाइन में प्रकाशित किया जाए वो यही है, योग्यता के बिना असुरी ज्ञान भौतिक ज्ञान दिया जा रहा है लोगों को। आध्यात्मिकता ही योग्यता है भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी। जैसे एक उदाहरण दो, मान लीजिए कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला गया है, उसमें सबको एडमिशन देते हैं, चलो आ जाओ एंट्रेंस एग्जाम लिख के आ जाओ, सबको इंजीनियरिंग सिखाया जाता है, लेकिन जब बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं इंजीनियरिंग सीखने का अधिकार है कि नहीं, उसका परीक्षा बराबर नहीं होता है। तो आप बोले कि प्रभु जी बड़ा एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका प्रतिभा की परीक्षा होता है। नहीं, उसकी इंजीनियरिंग सीखने की प्रतिभा का परीक्षा जरूर हुआ है, लेकिन वो इंजीनियरिंग शिक्षा को प्राप्त करके उस इंजीनियरिंग शिक्षा को सही जगह इस्तेमाल करेगा करके उसका उस प्रकार का चारित्रिक चरित्र है कि नहीं, उस प्रकार का उनके पास संस्कार है कि नहीं, वो नहीं देखा जाता है। उसकी योग्यता को बराबर नहीं जाए, योग्य लोगों को जब ज्ञान दोगे तो निश्चित रूप में वो दुरुपयोग करेगा। जैसे आप देखो टेररिस्ट लोग हैं, उनके पास ऐसे ऐसे बंदूकें हैं, ऐसे ऐसे फैक्ट्री है, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं, आजकल की बड़े बड़े कंपनियों के पास भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए पहले ज़माने में जब ज्ञान दिया जाता था, वो ऐसा नहीं कि जो भी आए उसको सिखा दो, जो भी आए बोल दो, नहीं तो पैसा लेके बोल दो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितना भी योग्यवान क्यों ना हो, अगर उसका चरित्र बराबर नहीं है, उसका कैरेक्टर नहीं है, उसको ज्ञान को संभालने की क्षमता नहीं है, उसको नहीं दिया जाता। एक स्पष्ट उदाहरण क्या है, कर्ण। कर्ण जब आया द्रोणाचार्य के पास, मैं शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, द्रोणाचार्य ने उसको भेज दिया, नहीं नहीं सिखाऊंगा, जाओ, आई विल नॉट टीच यू। तो आप बोल सकते हो देखो कर्ण इतना एक्सपर्ट था, और द्रोणाचार्य ने पक्षपात किया, नहीं पक्षपात नहीं किया, वो जात भेद के ऊपर उन्हें द्रोणाचार्य ने इसको शिक्षा नहीं दिया, सारे जात समान हैं, सभी लोगों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, बड़े प्रचार हो रहा है स्त्री पुरुष को एक साथ में एक ही शिक्षा देना चाहिए, ये बड़ा प्रचार हो रहा है, लेकिन द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। क्यों मना किया भाई, सारे लोग निंदा करते द्रोणाचार्य का। अभी आगे देखिए स्टोरी, अभी द्रोणाचार्य से मुलाकात हुआ कर्ण का, द्रोणाचार्य कर्ण आके प्रणाम किया, उन्होंने कहा आखी के शिक्षा प्रेरणा से मैं सीखा हूँ, अभी दीदा देखो कर्ण नहीं सॉरी एकलव्य की बात हो रही है, आई जस्ट गॉट कन्फ्यूज, एकलव्य की। तो एकलव्य ने कहा कि मैं अपनी श्रद्धा आपकी प्रति है, तो आपका मूर्ति बना के मैंने इसको सीखा हूँ। तो दिखाए द्रोणाचार्य ने, देखा द्रोणाचार्य की मूर्ति है, और एकलव्य ने इतना अच्छा शिक्षा ग्रहण कर लिया था। तब अर्जुन ने द्रोणाचार्य को देखा, क्योंकि द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा किया था, अर्जुन देखो मैं तुम्हारे से बढ़कर कोई योद्धा नहीं है इस जगत में, खास करके धनुष बाण चलाने में तुमसे एक्सपर्ट कोई नहीं है। अर्जुन हैरान हो गया कि एकलव्य के पास ऐसी क्षमता थी जो अर्जुन से बढ़कर थी, क्या थी। तो अचानक द्रोणाचार्य अर्जुन जा रहे थे, तो क्या हुआ, उधर एक कुत्ता भोंक रहा था, अचानक कुत्ता भोंकना बंद कर दिया, तो देखा सात दिशाओं से सात बाण आए, और वो कुत्ते का मुंह होता है ना, उसको हजार अलग तरीके से पिन जैसे मारा हुआ बाण लग गया, तो कुत्ता का भोंकना बंद हो गया। तो अर्जुन ने सोचा ये इस प्रकार का जो विद्या है वो मेरे पास भी नहीं है। तब द्रोणाचार्य ने हंसते हुए एकलव्य से पूछा, अच्छा तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मुझसे सीखे हो, भले मैं और मेरे विग्रह में तो कोई अंतर नहीं, विग्रह की प्रेरणा से सीखे हो, तो इसलिए मुझे गुरु दक्षिणा दो। तब एकलव्य ने कहा क्या चाहिए बताइए, तो द्रोणाचार्य ने कहा तुम्हारा जो राइट हैंड का अंगूठा चाहिए। तो एकलव्य ने काट के दिया, जिसके वजह से सारे जगत क्या बोलता है, देखो कितना बड़ा गुरु भक्ति है एकलव्य का, और द्रोणाचार्य कितना बड़ा दुष्ट है, देखो अपनी प्रिय अर्जुन को पक्षपात करने के लिए एकलव्य कितना सामर्थ्य है, इतना शक्तिशाली, उसका अंगूठा ले लिया। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं एकलव्य सारा जगत में प्रसिद्ध है, किस रूप में, गुरु भक्ति के लिए प्रतीक है, लेकिन इससे बढ़कर कोई गुरुद्रोही है ही नहीं। तब बोलोगे कैसे भाई, क्योंकि द्रोणाचार्य ने कहा था एकलव्य को तुमको मैं सिखाऊंगा नहीं, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास उसको सीखने की योग्यता नहीं है। उस शिक्षा को सीखने की योग्यता कैसे निर्णय किया जा सकता है, वो सीख सकता नहीं उसके ऊपर नहीं, वो सीखने के बाद उसका उसको संभाल सकता है क्या, लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सकता है क्या, उसके उसको इस प्रकार का संस्कार है क्या, उसको इस प्रकार का चरित्र है क्या, वो पहले देखना पड़ता है। अभी उसका जन्म उदाहरण क्या है कि द्रोणाचार्य ने बराबर एकलव्य को नहीं सिखाया था, उदाहरण क्या है देखिए, कुत्ता का काम है भोंकना है कि नहीं, बेचारा उस कुत्ते को अपना इतना बड़ा सामर्थ्य धनुर्विद्या किसके ओर प्रयोग किया, कुत्ते को भोंकने का बंद करने के लिए किया, कुत्ते का भोंकना बंद करने के लिए इतना बड़ा धनुर्विद्या का सामर्थ्य कुत्ते को प्रयोग किया, यही समस्या है। एटॉमिक साइंस, बड़े बड़े लोग एटम बॉम्ब को न्यूक्लियर बॉम्ब को रिसर्च करते हैं, लेकिन किसके ओर प्रयोग करते हैं वो लोग, एक अस्पताल में एक बच्चा जन्म ले उसको मारने के लिए, अब जब युद्ध होता है टीवी में दिखाते हैं ना, अब देखो एक अस्पताल के ऊपर बॉम्ब गिरा तो एक बच्चा जन्म लिया था, स्त्री है उसका, वो मरा पड़ा हुआ है। तो क्या फायदा आपका एपिडेमिक साइंस का, इसकी इसके लिए है, क्योंकि चरित्रहीन लोग होते हैं जिसका संस्कार नहीं होते हैं, वो योग्यता के बिना जब शिक्षा दिया जाता है वो निश्चित रूप में वो शिक्षा जो है वो समाज को नाश करने के लिए ही है। इसलिए वैदिक ज़माने में बहुत सतर्क थे किसको शिक्षा देना है किसको शिक्षा देना नहीं है। तो इसी प्रकार ज्ञानामृतम, ये ज्ञानी जो होते हैं वो क्या करते हैं, यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनौ, काले समय आने पर, योग्य व्यक्ति आने पर क्या करते हैं, ददे। समय नहीं है, योग्यता भी नहीं है तो नहीं देते, योग्यता है लेकिन समय आने पर ही देते हैं, समय नहीं आए तो नहीं देंगे। उदाहरण क्या है, नारद जी और अंगिरव, चित्रकेतु, चित्रकेतु राजा है, शोक में है, किसका उनको इच्छा में है, उसको इच्छा पूर्ण नहीं हो रहा था, पुत्र नहीं है, 1 करोड़ पत्नियां हैं लेकिन फिर भी बच्चा नहीं है, है कि नहीं। रामायण की चर्चा में चर्चा कर रहे हैं, दशरथ ने 360 पत्नियों को विवाह किया पुत्र के मुँह में, पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए करके, ये अंगी चित्रकेतु तो 1 करोड़ कर लिया था। अभी क्या करें, जब अंगिरा ऋषि गए तो चित्रकेतु ने प्रस्ताव कहा मेरा पुत्र नहीं है, सब कुछ है। तो अंगिर ऋषि इतने महान है, ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानामृतम ना वा ना नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्यों उनको मालूम है, अत्यंत आसक्त व्यक्ति होता है ना उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सकते आप, देने पर भी वो पत्थर को या गधे को संगीत सुनाने के बराबर है। गधे के सामने आप क्लासिकल गाओगे तो क्या होगा, गधा क्या करेगा मैं आया करके चले जाएगा, इतना ही करेगा कि उसको क्या समझ में आएगा, तो इसलिए उन्होंने नहीं किया। बाद में नारद जी और अंगिरा दोनों छद्म वेश में आए, तभी क्या हुआ, चित्रकेतु का मृत्यु का मृत्यु हो गया, और उस समय भी वो लोगों ने नहीं दिया, क्यों, अत्यंत शोक में था, अत्यंत दुख में था। तो अत्यंत आसक्त व्यक्ति, अत्यंत दुखी व्यक्ति को आप आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सकते हो। अभी लेकिन ये काल का इंतजार कर रहे थे, कौन, ये दोनों, ये कौन से समय का इंतजार किया, जब वो लोगों ने कहा देखो तुम्हारा पुत्र मर गया है शोक में है, उसको उठाया उसको जगाया। असित में कहा जाता है वो दिव्य तरीके से उनकी शक्ति के द्वारा अंगिरा ऋषि जो है वो पुत्र के शरीर में प्रवेश करके वो बोलना शुरू किए। जब पुत्र बोल रहा था, पुत्र के प्रति मोह है, पुत्र बोलना शुरू किया, बहुत ध्यान से सुना क्या बोल रहा है मेरा पुत्र कभी होता है ना बच्चों का प्रोग्राम होता है, वो कभी मंदिर में आते लेकिन उसके बच्चे जब श्लोक बोलते हैं ना स्टेज के ऊपर, वाह बड़े ध्यान से सुनते हैं, कहो कैसे, हाँ बड़े महाराज आएंगे वो श्लोक सुनाएंगे, उसको रुचि नहीं है उससे सुनने में हाँ उनको अपने बच्चा जब स्टेज में जाके कुछ बोलता है ना, बड़े ध्यान से सुनते हैं, वाह मेरा बच्चा बहुत अच्छा बोलता है। तो ये एक युक्ति है, जैसे बच्चा बोलना शुरू किया तो चित्रकेतु शांत हो गया, तब नारद और अंगिरा दोनों ने अपना स्वरूप को दिखाया, हम वही है, मैं वही अंगिरा हूँ जो पहले आया था। तब चित्रकेतु ने एक प्रश्न पूछा, तो ये ज्ञान अभी तुम दे रहे हो पहले क्यों नहीं दिया आप, तब अंगिरा ऋषि ने कहा पहले आप योग्य नहीं थे, आप सुनने की क्षमता नहीं थी, आपके पास पात्रता नहीं थी। एक होता है समझने की शक्ति, दूसरा है वो समझा हुआ चीज को धारण करने की पात्रता। तो ये यथा ज्ञानिनो ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददे नवे, शास्त्र में अनेकों अनेकों ऐसे उदाहरण है, चित्रकेतु का है, कृष्ण का है, भगवद गीता में लीजिए, अर्जुन रो रहा है, अनेकों अनेकों कारण दे रहा है, मैं युद्ध नहीं करूँगा वो करूँगा, 4 कारण दिया पहले अध्याय में, और जैसे दूसरा अध्याय के शुरुआत में दूसरा और तीसरा श्लोक में अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने अर्जुन को कहा, कुतस्तु आकस्मलितम विषय में समुपस्थितम अनारिजुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन तैभ्यम आस्मका पार्था नहीं तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परांतपा। जैसा एक मित्र दूसरे मित्र से बात करता है, क्या हो गया तुमको, एक सब हृदय क्यों, ये अनार्य अस्वर्ग्यम, आर्य की कार्य नहीं है, अस्वर्ग्यम क्लैभ्यम, इस प्रकार का जो तुम्हारा एक कायरपन है उसको छोड़ दो, क्लैभ्यम मास्मगा पार्था, ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, एक मित्र जैसे दूसरे मित्र से बात करता है। लेकिन जैसा अर्जुन ने दूसरे देह के सातवें श्लोक में शरणागति को स्वीकार किया, शरण लिया। कार्पण्य दोष उपत स्वभा पृच्छामि तवाम धर्मम समूढ चेता, जैसे श्लोक उच्चारण किया, शरणागत लिया, शिष्यस्ते हम साजवाम तवाम प्रपन्नम, शिष्य बन गए। तुरंत कृष्ण ने क्या कहा, सोच्चारण सोचस्तम प्रज्ञा उदाम से ज्ञान देना शुरू किया। तो कृष्ण पहले भी ज्ञान दे सकते थे, दूसरे और तीसरे श्लोक से ही शुरू कर सकते थे ज्ञान देना, अभी क्यों किया? क्योंकि अर्जुन का शरणागति का इंतजार कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति आया, प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन के बीच में उठ के खड़े होकर उन्होंने कहा, आया हुआ क्वेश्चन। प्रभुपाद ने कहा, सरेंडर फर्स्ट, आई वॉन्ट यू टू आंसर, आई विल नॉट आंसर। प्रभुपाद ने कहा कि आई विल नॉट आंसर, नो, इतना भयानक। वो बोलते यू हैव टू, प्रभुपाद बोलते नो, आई विल नॉट आंसर, फर्स्ट सरेंडर। तो बहुत ही हल्ला गुल्ला हो गया, तो कुछ भक्तों ने क्या किया, उसको जबरदस्ती खींच के लेके जाते, वो चिल्लाने लगा, यू हैव टू आंसर। प्रभुपाद ने कहा, आई विल नॉट, यू सरेंडर फर्स्ट, कृष्ण टोल्ड सरेंडर फर्स्ट। तो जब तक शरणागति नहीं होता है, तब तक वो शिक्षा के पात्र नहीं बनता है, शिक्षा को प्राप्त करने का पात्र नहीं बनता, तब तक नहीं देते। तो ये एक ज्ञानी का स्वभाव होता है, कभी वो देते हैं कभी नहीं देते हैं, किसी को देते हैं किसी को नहीं देते हैं। वो क्यों, इसके पीछे कारण यही है। तो ऐसा अनेकों अनेकों जगह हुआ है। दीक्षा के विषय में देखिए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर इतने महान, और गौर किशोर दास बाबा से सिख दीक्षा लेना है, एक बार गए, बोला देखता हूँ अभी बाद में आओ, अगले दिन वापस गए, नहीं भाई गौरंग मनोहर से पूछा नहीं, पूछ के बताऊंगा। 17 बार बाद में भक्तिदास ठाकुर ने कहा, अगर आप नहीं दोगे तो मैं भी अपना आत्महत्या कर लूँगा, मेरा जीवन का जीने का क्या फ़ायदा। तो अगले दिन जब गए थे, तब उन्होंने 17 बार जो है गौर किशोर दास बाबा जी ने दीक्षा दी। वो भी कैसे दिया, थोड़ा मिट्टी निकाल के फेंक जाओ, थोड़ा नाम आज से ये है, बस हो गया। पहले क्यों नहीं दिया, ज्ञान ही नो ज्ञानामृतम, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। तो ये शरणागति की परीक्षा है। दूसरी ओर रामानुजाचार्य महान आचार्य, पूरा श्रीरंगम में प्रसिद्ध, संन्यास दे चुके हैं, और तिरुकोष्टी और मदुरई से कितना दूर है, कम से कम दो श्रीरंगम से कितना दूर है, करीबन 200 किलोमीटर की दूरी है तिरुकोष्टी और मदुरई के पास में है। वो उस समय तो कोई गाड़ी घोड़ा तो है नहीं, चल के जाते, सन्यासी तो चल के जाना पड़ता था गर्मी के मौसम में, कितना बहुत दुष्कर चीज है। 17 बार 200 किलोमीटर चल जाना और आना हुआ। जब तिरुकोष्टी और रंबी वो आए थे श्रीरंगम एक बार, तो स्वयं रंगनाथ जी ने कहा, ये मेरे प्रिय भक्त है, उनको दे दो, तुम मंत्र दे दो। तो इतना वो जो मंत्र है जिसको अष्टाक्षरी मंत्र कहा जाता है, तो ये मंत्र दो, मंत्र रहस्य को समझाओ, मंत्र त्रय तीन मंत्र है वो श्री वैष्णव सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जो मंत्र है बड़ा गुह्य चीज़ है, मैं कैसे दूँ, जिसका एकदम बिल्कुल मन शुद्ध हो चुका है उसी को दे सकता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। किसको, रंगनाथ जी को कहा, त्रिकोष्ठी और नंबी। तब रंगनाथ जी कहा कि तुम बिना चिंता करके दे दो, मैं बोल रहा हूँ इसलिए दे दो, क्योंकि मेरे लिए बहुत प्रिय है, रामानुजाचार्य बहुत शुद्ध व्यक्ति है, उनको दे दो। तो अगली बार रामानुजाचार्य गए तो उनको मंत्र दिया, देने के समय कहा, देखो किसी को मत देना है मंत्र, किसी को मत देना, क्योंकि अगर तुम दोगे तो बड़ा पाप लगेगा तुमको, क्योंकि ये मंत्र जो है बड़ा पवित्र आत्मा लोग ही जप कर सकते हैं, ये मंत्र में इतनी शक्ति है, जो मंत्र जप करता है वो उनको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो रामानुजाचार्य मंत्र लिया और बाहर आके देखा कि सारे प्रजा अज्ञान में इधर उधर घूम रहे हैं, तो त्रिकोष्ठी और वो मंदिर के ऊपर पहुँचे, अभी वो मंदिर में उस जगह अभी भी है जिस जगह पर रामानुजाचार्य खड़े हो गए, उधर खड़े हो गए, सब लोगों को बुलाया, सबको, मैं ऐसा मंत्र दे रहा हूँ जिसके द्वारा हमको भगवत प्राप्ति तुरंत हो जाता है, भगवान के धाम में जा सकते हो, ऐसा उन्होंने कहा। पहले उन्होंने कहा कि मैं ऐसा रत्न देने वाला हूँ आपको, ऐसा अद्भुत चीज़ दे रहा हूँ, स्पेशल गिफ्ट दे रहा हूँ, सबको आओ आओ, सीक्रेट बताने वाला हूँ, रहस्य बताने वाला हूँ। तो अगर कोई चीज़ किसी को बोलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, महत्वपूर्ण चीज़ बोल रहा हूँ, कोई आएगा नहीं। अगर किसी को बोले बहुत गुह्य चीज़ बोल रहा हूँ, सीक्रेट बोल रहा हूँ, सब लोग आते हैं, सीक्रेट क्या है भाई बताओ। तो बहुत सीक्रेट है, बहुत रहस्य है, तो सब लोग आगे खड़े हो गए, सब देख रहे रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य ने कहा कि सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाए, ओम नमो नारायणाय, सब लोग बोले ओम नमो नारायण, ऐसे ऐसे 3 बार बोलने लगे। अभी ये खबर मिला तिरुकोष्ठी और रंबी को, हाँ तो वो भागते भागते आए तो ब्राह्मण आचार्य को पकड़े, तुमने जो किया है मालूम है तुम कहाँ जाना पड़ेगा, तुमको तेरे को नरक जाना पड़ेगा, मैंने कहा था किसी को मत देना ये ज्ञान को ये मंत्र को, आप क्यों दे दिया सबको। तो उन्होंने कहा, रामाचार्य ने कहा मुझे मालूम है कि मैं नरक जाऊँगा, लेकिन आपने कहा ना ये मंत्र जप करने से लोग भगवान के धाम जाएंगे, अगर अनेकों हजारों लाखों की संख्या में लोग भगवत धाम जाएंगे मैं अकेला नरक जाऊँगा चलेगा उसके लिए। ये बात सुनकर त्रिकोशी और नंबी का हृदय पिघल गया, तब समझ में आया। तो उन्होंने कहा मुझे मालूम पड़ा, अभी मालूम पड़ रहा है कि ये मंत्र को तुम्हारे हृदय में तुमने धारण किया है उसके लिए प्रेरणा स्वयं रंगनाथ जी ने मुझे कहा, वही मालूम पड़ा रंगनाथ जी क्यों मुझे इस प्रकार आपको देने के लिए कहा। तो ऐसे श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर इस श्लोक में व्याख्या करते हुए उन्हें तीन उदाहरण दिए, नारद को उदाहरण दिया, प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया और जड़व्रत का उदाहरण दिया, नारद प्रहलाद और जड़व्रत। नारद जी ने क्या किया, किसको शिक्षा प्रदान किया, असुरों के बच्चों को, है कि नहीं, हाँ सॉरी प्रहलाद महाराज असुरों के बच्चों को शिक्षा दिया। हमने कभी ये नहीं देखा कि ये प्रहलाद महाराज जो है उधर के ब्राह्मणों को शिक्षा दिया या उधर के बड़े विद्वान लोगों को उन्होंने शिक्षा दिया, नहीं वो भी कब दिया, समय आने पर, बच्चों का इंटरवल टाइम था, खेलने जा रहे थे और समय ऐसे प्रहलाद अकेले बैठे थे, सब बच्चों ने पूछा क्यों चलो ना साथ में खेलने के लिए हमारा, हाँ तो प्रहलाद महाराज ने कहा क्यों मारे आचरित प्रज्ञ भगवान के विषय में सुनना चाहिए। तो सब लोग बोलने लगे क्यों सुनना चाहिए बचपन से, अभी तो खेलने का समय है। तो अपनी वाक चातुरी के द्वारा अपनी मधुर वाणी के द्वारा प्रहलाद महाराज ने इतना गहरी शिक्षा दिया तो सारे असुर के बच्चे जो है वो प्रहलाद महाराज जैसे वो कर रहे थे वैसे ही करने लगे, यानी सब लोग नाम संकीर्तन करने लगे, सब लोग भजन करने लगे। तो संड और अमर जो है परेशान हो गए उससे, ये हमने प्रहलाद महाराज देखा। समय आने पर उन्होंने चुन के संड वर्ग भी नहीं है उस समय उन्होंने ये शिक्षा प्रदान किया। और दूसरा उदाहरण है जड़व्रत, जड़व्रत राजा रघुगण को शिक्षा दिया, कब शिक्षा दिया, ऐसा नहीं कि राजा आया है चलो मैं उनको अपना ज्ञान दिखाऊंगा, नहीं वो राजा ने कहा आओ इधर आके उसको उठा के लाओ, तो उसको पलकी को उठा के लेके जा रहे थे, लेकिन राजा ने पूछा क्या इस प्रकार चल रहे हो, तो तब उन्होंने शुरुआत किया आध्यात्मिक ज्ञान का शिक्षा दिया, इतना सुंदर ज्ञान का शिक्षा दिया, किसको, राजा रघुगण को दिया। समय आने पर वो देते हैं, ये ज्ञानी का स्वभाव होता है। और तीसरा है नारद जी, नारद जी रास्ते में जा रहे उन्होंने एक मृगारी उनको शिक्षा दिया, अनेकों अनेकों लोग है बड़े बड़े विद्वान है पंडित लोग है उस शहर में, उन सबको छोड़ के उधर जाके एक मृगारी नामक एक हंटर एक शिकारी को उन्हें शिष्य बनाया। तो इसलिए गुरु किसको ज्ञान देते हैं किसको नहीं देते, कब देते हैं कब नहीं देते, इसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए। जैसे नदी का मूल का विचार नहीं करना चाहिए, गुरु की कार्यों के ऊपर कोई विचार नहीं करना चाहिए, ये क्यों नहीं दिया मुझे, ऐसा क्यों किया, इसको ये क्यों दिया, इससे ही ज़्यादा क्यों मैं बात करते हैं, मुझसे तो बात ही नहीं करते, कभी विचार नहीं करते, मनुस्मृति में कहा गया है। और तीसरा माँ की शीलता के ऊपर कभी चर्चा नहीं करना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे भारतीय सभ्यता के अनुसार है। आप मान लो कि ज्ञानी पुरुष के पास जाके अगर कुछ पूछोगे आपको क्या चाहिए, वो कुछ मौन हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, ये क्या बोलते नहीं है, क्या चाहिए कुछ तो बोले तब, नहीं कोई विचार नहीं करना चाहिए, नहीं बोला उसको एहतार रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे पहाड़ के ऊपर से जल आता है कभी नहीं आता है, आया तो आया नहीं तो नहीं आया, हमारा प्रयास तो रहेगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये कभी आशा जरूर रखना है, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि मुझे ये दो, इस प्रकार की बात कभी नहीं हो सकता ज्ञानी पुरुष के साथ। तो ये चीज़ें हमने इस श्लोक से थोड़ा बहुत ग्रहण किया है। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? तंत्रा श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय।